ओम शांति। बहुत सुंदर, धन्यवाद सुरेश भाई जी को। अभी हम अनुभवों की दुनिया में चलेंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी आएंगे अभी। इन्हों का परिचय तो सूरज को दीपक दिखाने जैसे होगा, फिर भी संक्षिप्त में इनका परिचय। 1962 में ही डॉक्टरेट करके उसी समय अपना प्रैक्टिस शुरू किया, फिर दोनों डॉक्टरी शुरू किया। पेशेंट्स को तो मेडिटेशन से बहुत लाभ हुआ, फिर बहुत सारे देशों में इन्होंने सेवाएं दी, पांचों ही खंडों में। फिर ऑस्ट्रेलिया में रहे, अपना जीवन इस प्रकार से सजाया जो स्वयं भगवान भी इनको उपाधि देते हैं, जैसे नाम है वैसे ही इनका जीवन। बाबा भी इनको कहते हैं निर्मल आश्रम। और इनके जीवन में भी ये देख सकते हैं, निराकारी स्थिति, निर्विकारी व्यवहार, निरहंकारी स्वभाव। तो अभी जो बाबा के शिक्षाओं से या बाबा के साथ में जो इन्होंने सीखा, अनुभव किया, और हम भी सहज रूप से उस स्थिति को कैसे पाए, उसके लिए अपने अनुभवों से हमको शिक्षाएं देंगे, सुनेंगे आदरणीय दीदी निर्मला जी से।
निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये तीन शब्द बाबा ने अंत में बोले थे और हमें ये अवस्था बनानी है। तो हम देखते हैं कईयों को अपना अहंकार रहता है, कोई खूबसूरत है तो अपने स्वरूप का अहंकार रहता है, कोई धनवान है धन का, कोई ऊंच कुल का है अपने कुल का अहंकार रहता है, किसी को अपनी विशेषता का अहंकार रहता है, किसी को अपनी पोजीशन का अहंकार रहता है। अब बाबा हमें आत्मभान में रहने की सूचना रोज देते रहते हैं। तो जितना हम आत्मभान में रहेंगे, अहंकार नहीं रहेगा। और देखा गया है कि ज्ञान में आने के बाद जो पहले अपने में विशेषता थी, उस विशेषता में भी और विशेषता आ जाती है। जैसे कहते हैं कि सोने में सुगंध, हम सोना जैसे थे परंतु बाबा के ज्ञान से उसमें सुगंध आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कई आर्टिस्ट ज्ञान में थे, अपना अनुभव सुनाते थे कि ज्ञान के पहले जब पहला दिन होता था ना शो का, तो कई न्यूज़पेपर में उसका फीडबैक आता था, तो पहले दिन थोड़ा नर्वस हो जाते थे, परंतु ज्ञान के बाद फिर वो नर्वसनेस नहीं आती। वो अहंकारी होते हैं ना, वो अपनी गर्दन हमेशा ऊंची रख कर चलते हैं। उसको नमस्ते करना, नमन करना, नीचे झुकना नहीं आता। परंतु जैसे वृक्ष में हम डालियां देखते हैं, जितने फल ज्यादा, डालियां झुकी रहेंगी। तो इसी रीत से जितने हमारे में गुण आएंगे, गुणवान लोग ज्यादा झुकते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन हमने देखा। ब्रह्मा बाबा कभी बच्चों को नहीं कहता था नमस्ते कहो या झुको या पांव को छुओ या पांव को धुलाई करके अमृत पियो। दुनिया में गुरु लोग तो कितना ठाट रहते। शंकराचार्य जब टूर पर जाता है तो क्या करता है, पहले उसकी कार में उसका चांदी का सिंहासन जाता, फिर जहां भी गद्दी पर बैठ कर वह प्रवचन करेगा उस गद्दी पर उसका सिंहासन रहेगा। और उसके कम से कम 25 फॉलोअर्स होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, सब उसमें ट्रेवल करते हैं। और ब्रह्मा बाबा उनके जीवन में मधुबन में एक भी गाड़ी नहीं थी। हम सब जब आते थे तो बैलगाड़ी में हमारा सामान आता था, हम बस स्टॉप से पैदल आते थे। उन दिनों में 60s में हर एक शहर में टैक्सियां या थ्री व्हीलर कम थे। घोड़े गाड़ी, टांगा आदि आदि। तो बाबा हमेशा कहते थे, जब भी स्टेशन पर आते थे ना, कहते थे कि मुझे लेने के लिए स्टेशन पर बड़ा क्राउड नहीं आवे, फूल हार स्वीकार नहीं करते थे कि ये तो देवताओं को सौंपता है। तो इसी रीत से उन्होंने माताओं को आगे रखा, यज्ञ की मेन हेड सरस्वती को रखा, खुद नहीं हेड रहे, ट्रस्टी माताओं को बनाया। और आप मुरली में देखते हैं बच्चों की कितनी महिमा करते हैं, तो मैं आपको मेरे से भी ऊंच बनाता हूं। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि बाबा ने प्रैक्टिकल में निरंकारी रहकर हमको एक हमारे सामने एग्जाम्पल दिखा। इतना ही नहीं, दादियों को भी देखेंगे, एक दो को इतना रिगार्ड देती थी, प्रकाशमणि दादी, मनोहर दादी को या रतन मोहिनी दादी को, सबको दादी दादी कहके बुलाती थी। तो हमें भी क्या करना पड़े, जो भी विशेषता है हमें बाबा ने दी है, ये हमेशा बुद्धि में रखना है कि बाबा ने मुझे विशेषता दी है। यदि कोई महिमा करे कि आप तो बहुत स्वीट हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप योग कराते हो, तो हमें बहुत आनंद आता है, हम उड़ कर चले जाते हैं। यदि कोई महिमा करे, वो महिमा स्वीकारना नहीं है, मन से स्वीकारना नहीं, मन से ये बुद्धि में याद रखना है, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है। तो जब इस प्रकार की हमारी वृत्ति रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे, मैं नहीं, सबसे बड़ी माया है मैं और मेरा, ये दो ना हो, न मैं हूं न मेरा। तो ये है निरअहंकार स्थिति। अभी निर्विकार स्थिति देखें, तो बड़े बड़े तो 10 विकार हैं, तो इन 10 विकारों का भी सूक्ष्म रूप हमें देखना है कि देहभान कैसे होता है, क्योंकि हमको उन विकारी स्थिति में रहने की ऐसी आदत पड़ गई है ना, तो हम समझ नहीं सकते हैं कई बार कि हमारे में विकार है। तो देह भान वाले हैं ना, वो क्या करेंगे, अपने ऊपर उनको दया आएंगे, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई महिमा नहीं करता, वो कहेंगे ओ मेरी बहन की, मेरे भाई की तो मेरी माँ बहुत आगे रखती है, मुझे नहीं रखती है, आदि आदि। देवभान वाले हैं वो, जब प्रवचन करना होता है, कोई VIP के सामने जाना होता है, नर्वस हो जाते हैं। तो ये देखना है कि हमारे में समान हो, नर्वस ना हो। देहभान वाले बाह्यमुखी होते हैं, जहां भी जाएंगे देखेंगे कि यहाँ का डेकोरेशन कैसा है, कारपेट कैसा है, पर्दे कैसे हैं, फर्नीचर कैसा है, सब देखते रहेंगे। और अपना श्रृंगार ऐसा करेंगे जो सब आकर्षित हों। तो समय, शक्ति, धन अपना श्रृंगार करने में लगाएंगे, रोज नई नई फैशन के ड्रेस खरीद के लाएंगे, शॉप में जाएंगे तो देखते रहेंगे कि कौन सी नई डिजाइन है। कई बार खरीदना भी नहीं है ना, फिर भी ध्यान चला जाता है कि क्या अलंकार है, शोकेस में क्या पड़ा है आदि आदि। उनको नाम मान शान की इच्छा रहती है और आजकल तो क्या है, देवभान वाले अपना रोज और कम से कम हफ्ते में एक बार वजन चेक करेंगे, इंच टेप लेकर अपना यहाँ का सब माप करेंगे कि हमारा वजन तो नहीं बढ़ता है और डाइटिंग करना इतने तक कि हमारे पास डांसर थी तो उसको है बैले डांसर थी तो उसको उसका जो टीचर था वो हमेशा कहता था कि वजन बढ़ना नहीं चाहिए, अभी भूख लगती है, खाना भी खाना है, फिर क्या करेंगे खा के उल्टी कर लेंगे ताकि वजन ना बढ़े। तो आजकल ये करते हैं, खाते नहीं या खा के फिर उल्टी कर लेते हैं और चर्बी कटाने के लिए वजन, आजकल ऑपरेशन भी होते हैं ना, लाइपोसक्शन, चर्बी निकाल देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, अपना नाक ऊंचा कराना है, आंख ऊंची करानी है, हाँ क्या कराना है। तो आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत होती है, उसमें खर्चा करते हैं। फिर ब्यूटी सैलून में जाना होता है, माताएं पार्टी में जाने के पहले बाल बनवाती हैं, ब्यूटी सैलून में जाती हैं, ऐसे ये इसके बनाना होता है, ये बनाना होता है, तो उसमें टाइम मनी एनर्जी खर्च होता है। और हंसना मजाक करना, बाबा कहता है हर्षित चेहरा हो परंतु बड़े आवाज से मजाक करना हंसना ये भी देवान की निशानी है। तो अपने कपड़ों से, अपनी चाल चलन और अदाओं से किसी को इम्प्रेस करना ये भी देवान की निशानी हो। तो इसलिए हमें देखना है कि अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को देखना है कि मेरे में कौन से गुण है, कौन से अवगुण है। पर आईने में दिन में कई बार देखना नहीं है कि मेरे बाल ठीक है या नहीं, मेरे कपड़े ठीक है या नहीं, क्योंकि जो देवभान वाले हैं ना, बैठने समय भी उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़ों में क्रीज न हो जाए, और कपड़े धुलाई करने में भी इतना टाइम लगाएंगे। हमारे पास एक बहन थी, मशीन में कपड़ा डालने के पहले घिस घिस के करेंगी, फिर मशीन में डालेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से, फिर प्रेस करने में भी अच्छा टाइम लगाएंगे कि जरा भी एक भी क्रीज ना रहे। तो ये क्या है, चाहे खाने में, पीने में, पहनने में, इतना अपना समय और शक्ति लगाते हैं और बाबा की याद नेचुरली भूल जाती है। तो पहला तो मुख्य विकार है देहभान, दूसरा है अहंकार। अहंकारी की क्या निशानी है, वो अपने को बहुत बड़ा समझता है। और इसलिए वो औरों को सम्मान नहीं देता है, उनका इंसल्ट करेगा, तुमको कुछ पता नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बुद्धू हो, ऐसा ऐसा। तो अहंकारी दूसरों का अपमान करता है और बाहर से हंसता होगा, अंदर से रोता होगा, दुखी होगा। हमारे पास एक भाई था ऑस्ट्रेलिया में, भाषण करते करते घड़ी घड़ी हंसता था। मैंने कहा तुम हंसता क्यों था, कोई कारण नहीं था? तो कहता है मैं तो नर्वस था इसलिए हंसता था। तो अंदर से नर्वस था, बाहर से हंसता रहता। फिर अहंकारी होता है, वो सारा समय अपनी बड़ाई करेगा, मैं ऐसा हूं, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे कुल ऐसा था, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और नाजुक स्वभाव वाला, उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, वो दूसरों का इंसल्ट करेगा पर उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। वो ऑथोरिटी से बॉसी होके बात करेगा और वो जो कहेगा वही सच्चे है, वही करना है सबको। और दूसरे की टीका टिप्पण करता रहेगा, फिर सबसे बड़ा है काम महाशत्रु। तो विकार में, काम विकार में जाना वो तो छूट जाता है हमारा, ब्राह्मणों ने वो तो जल्दी छोड़ दिया, परंतु उसका सूक्ष्म रूप क्या है, एक है किसी से प्रभावित हो जाना, इसका भाषण तो बहुत अच्छा है, इसका योग तो बहुत अच्छा है, भूल जाते हैं कि ये तो बाबा का ज्ञान है, ये तो बाबा योग में शक्ति देता है या अनुभव कराता है, वो व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आकर्षण, ये चीज बहुत अच्छी है, ये मकान बहुत अच्छा है, ये गाड़ी का कलर बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि वस्तु वैभव व्यक्ति से आकर्षित होना, ये भी एक काम विकार का सूक्ष्म रूप है। फिर फैमिलियारिटी, बाबा कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, आज भी बताया मुझे अपना सखा बना लो, परंतु कईयों का क्या होता है, एक दो से फैमिलियरिटी, तो सारा दिन एक दो से बातचीत करते रहेंगे, कुछ भी हुआ उस व्यक्ति को फोन करेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमको राय सलाह लेनी है बाबा से, हमें सुख का दुख का समाचार देना है बाबा को, उनका सहयोग लेना। फिर नाम रूप में फंसना, भक्ति में हम क्या करते थे, जिसके भगत होते थे ना उसका नाम स्मरण करते थे, राम 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 ना की नाम की माला जपते थे ना, और नेचुरली जिसका नाम स्मरण करते थे उसका रूप भी बुद्धि में आ जाता था। तो अभी क्या करते हैं, उस व्यक्ति का नाम सारा दिन लेते रहेंगे। जब भी बात होंगे, मेनली हम देखते हैं पति पत्नी में सारा दिन, पत्नी है पति का नाम लेते रहेंगे, पति मेरे पति ने ऐसे है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, आदि आदि, या पति पत्नी एक दो का, या माँ बाप अपना बच्चे में फंसे हुए होंगे, सारा दिन उनकी महिमा करते रहेंगे। और कामना, काम विकार और कामना, कोई भी इच्छा, ये भी एक सूक्ष्म विकार है, वो दोनों में आ सकता है, कामना लोभ में भी आ सकता है कि इच्छा है अच्छा लगता है, और काम विकार में भी आ सकता है। मोह का रूप क्या है, मोह क्या है, मेरा मेरा करेंगे, और मेरे पर आधारित होंगे, डिपेंडेंट। माँ समझेंगी कि मेरे बच्चे को मेरे सिवाय कौन संभालेगा, तो बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड होगा, और माँ का फिर मोह बच्चे में हो जाता है। और जब मोह होता है तो पजेसिव होते हैं कि मैं कहती हूं ये करना है, माँ बाप क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, चाहे वो चाहे ना चाहे, पर माँ बाप फोर्स करेंगे तुमको करना है ये। तो पजेसिव के, तुम मेरा पति हो, तुम्हारा काम है ये काम करना, तुम्हारा काम है कमाई करना, तुम्हारा काम है शॉपिंग करना। और पति पत्नी को कहेंगे तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा काम है चाय बनाना, खाना पकाना, सफाई करना, ये करना। तो इसी रीत से एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं। और जिसके अंदर मोह होगा ना, उसकी तरफदारी करेंगे, उसको फेवर करेंगे। समझो माँ के चार बच्चे हैं, परंतु एक में विशेष मोह होगा ना, तो उसके लिए खाना बचा के रखेंगे, पहले उसके लिए निकाल के रखेंगे, पीछे दूसरों को देंगे। या सेंटर में भी देखेंगे कि सेंटर में टीचर का मोह जिस स्टूडेंट में होगा ना, उनको नई नई मुरली देंगे, दूसरों को पुरानी। लोभ की क्या निशानी है, लोभ माना, जैसे बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे इच्छा है। तो क्या हुआ है कि हम ज्ञान में आए, अभी भी खाने पीने का लोभ रहता है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जैसे भी खुशबू आती है या आंखों से नहीं, बाबा कहते हैं आंखें सबसे ज्यादा हमको तंग करने वाली है, माया में फंसाने वाली है। आंखों से देखा, इच्छा हो गई कि मुझे होना चाहिए ये। तो इच्छा होती है, अच्छा लगता है, और अच्छी चीज लगेंगी ना तो रोज से ज्यादा खा लेंगे। चीज अच्छी नहीं है, कहीं आज तो भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, करके खाएंगे नहीं। लोभी है, कभी संतुष्ट नहीं, चाहिए 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 करते रहेंगे। और लोभी है वो मनुष्य भी होते हैं, किसी को देंगे नहीं। कितना भी करोड़ों रुपया होगा, 5,000 रुपया देंगे तो भी समझेंगे हमने बहुत दे दिया। और लोभी होता है ना वो स्वार्थी होता है, और चीजों का संग्रह करता रहता है। नया नया खरीदेगा भी, पुराना फेंकेगा नहीं। इसलिए आप देखेंगे कई बूढ़ों के पास इतना जमा किया होता है, पुराना भी रख देते हैं। गुस्सा क्रोध, उसका सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन। कारण क्या है? अधीर्य है, सहन शक्ति की कमी है, और वो जल्दी नाराज हो जाता है। कोई बार फोर्सफुल होते हैं, क्रोधी फोर्स करना, सीधा नहीं बोलता है, हाथ पछाड़ के पांव पछाड़ के बात करता है। और उसका और सूक्ष्म रूप है दिल से कष्ट। तो जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है, क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण एक दोस्त से आर्ग्यूमेंट करता है, दलील करता रहता है। और क्रोध की ये निशानी है, वो आंख में सामने नहीं देख सकता है किसी को। जिसके साथ गुस्सा आता है ना, उसे नजर फेर लेगा, और जिसके साथ क्रोध या वैर होता है तो क्या करेंगे, वो सामने से आएगा ना, उधर से दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। देखा ये यहां से आता है, दूसरे रास्ते से। और क्रोध में क्या कहेंगे, जिनको करना है वो करो, मुझे नहीं पूछो, मैं मदद नहीं करूंगा। तो समझो सहयोग नहीं देंगे। फिर अलबेलापन, जो अलबेलेपन अलबेले होते हैं ना, वो ठीक ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। होगा, करेंगे, देखेंगे आदि आदि, फिर काम नहीं होता है, कहेंगे हाँ ये हुआ ना इस कारण नहीं हुआ, मतलब बहानेबाजी करेगा। फिर कहेगा मैंने सोचा फलाना कर लेगा, फलाने की ड्यूटी है, किचरा देखेगा समझेगा और कोई सफाई करेगा। तो अपना समय शक्ति धन उसकी उनको वैल्यू नहीं और उसको व्यर्थ गंवाते हैं। भूल जाता है और मैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, नाराज हो गया मुझे क्या है, होने दो। तो ये किसी की परवाह नहीं करते और बहुत खर्च करते हैं। फिर आलस्य, आलस्य वाला है ना, मतलब उमंग उत्साह नहीं है, आलस्य है। समझते हैं हम आराम से बैठे तो उनको आराम पसंद होते हैं और वो जिम्मेवार नहीं रहते हैं। और फिर बहाना क्या कहेंगे, मैं थका हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ईर्ष्या, ईर्ष्या वाला क्या करता है, खुद को दूसरों के साथ भेंट करता है। ये ज्यादा स्वरूपवान है, उसको सब मान लेते हैं, पूछते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं। तो स्वमान की कमी है और अपने को फिर सुरक्षित नहीं समझते हैं। और कंपटीशन करेंगे तो ये कंपैरिजन कंपटीशन के संस्कार ना हो। बाबा हमें स्वमान बढ़ाने की युक्ति सिखलाते हैं। रोज कितने कितने स्वमान देते हैं तो हमें क्या करना पड़े, एक एक स्वमान लेकर अपने आप को ऊंचे उठाना है। और लास्ट दसवां विकार है वैर भाव, घृणा भाव। तो जिनका वैर भाव है वो क्या करते हैं, मारपीट। और इंडिया में तो क्या होता है, पुलिस को कंप्लेन करने नहीं जाएंगे, किसी ने कुछ गड़बड़ की उसको 10 जन आदमी इकट्ठा होके मार देंगे। और आजकल तो है न्यूज में सुनेंगे तो किसी ने प्रपोज किया कि हमारे साथ शादी करो। उसने शादी की मना की, उसके चेहरे पर एसिड डाल देते हैं। और उसके बारे में फिर गलत बातें करते हैं। और आजकल तो वीडियो और फेक वीडियो बनाकर उसकी ग्लानी करेंगे। और अंग्रेजी में कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये जैसे हम कहते हैं कोई ऊपर जाता है उसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, उसको हम अंग्रेजी में क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। कि दूसरों को ऊपर नहीं जाने देंगे, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें ये सब विकारों को जानकर अपने में से निकालना, उसके ऑपोजिट गुण या शक्ति अपने में भरनी है। जिसके अंदर अहंकार है उसको नम्रता धारण करनी है, जिसमें देहभान है देही अभिमानी बनना है, जिसमें काम विकार है उसको ब्रह्मचर्य ब्रह्माचारी बनने का लक्ष्य रखना है, जिसमें मोह है उसको बाबा में मोह रखना है, बाबा से प्यार रखना है, जिसमें लोभ है उसको देखना है कि बाबा से मुझे कितनी अविनाशी प्राप्ति होती है, तो संतुष्टता होंगी। क्योंकि विनाशी प्राप्तियों के पीछे जाएंगे कभी संतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि जो भी आज वैभव है, व्यक्ति है, जो भी है वो क्या है, फैशन बदलती रहती। और जो स्वरूपवान है बूढ़े भी होंगे तो उसकी ब्यूटी नहीं रहेंगी। तो इसलिए बाबा हमको जो अविनाशी प्राप्ति कराते हैं 21 जन्मों की, उसके पीछे हमको पुरुषार्थ करना है। जिसमें क्रोध है उसको बाबा से शांति की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सहन शक्ति धारण करनी। जो अलबेले हैं उनको केयरफुल रहने का बाबा से वरदान लेना है, क्योंकि जितना किसी चीज की वैल्यू समझेंगे ना, संकल्प समय धन संबंध तो क्या होगा, उससे हम अपना समय शक्ति संकल्प व्यर्थ नहीं गवाएंगे। उमंग उल्लास रखेंगे तो लेजी नहीं रहेंगे। उमंग उल्लास नहीं है तो होता है, चलता है, होगा, चलेगा, करते रहेंगे। जितना स्वमान में रहेंगे ईर्ष्या नहीं रहेंगे। जितना प्रेम भाव धारण करेंगे तो वैर भाव नहीं रहेगा, तो हमें निर्विकारी तो बनना है पर गुण संपन्न भी बनना। और लास्ट में है निराकार, क्योंकि आत्म अभिमानी तो पहले दिन से बनाया जाता है, परंतु वो आत्म स्वरूप में स्थित रहना उसका अभ्यास करना पड़ता। तो फर्स्ट स्टेप है आत्मभान में रहना, उससे आगे का स्टेप है अशरीर। शरीर का भान न रहे, अपने को फरिश्ता स्वरूप समझ के चलना। वो चलते फिरते हो सकता है, और हाई स्टेज है निराकार, मैं बिंदु, बोलना भी नहीं है, अपने को याद भी नहीं दिलाना है। ऐसा पक्का अभ्यास हो जाए आत्मभान में रहने का, मैं बिंदु निराकार, उस स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। और वो अभ्यास विशेष बैठकर करना है। और जितना जितना हम उस स्थिति में रहेंगे ऑटोमेटिक आत्मा का स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप, आनंद स्वरूप है ही, तो विकार को आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए हमें ये अभ्यास करते रहना है और अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करते रहना है कि मेरे में कौन से पुराने संस्कार है अभी तक। जो भी पुराने संस्कार है उन्हों को मिटाने की पक्की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी चलो हम 6:15 तक हम उस निराकारी स्थिति में रहें, क्योंकि ये तो अभ्यास करने की बात है। फिर 6:15 से 6:30 ब्रेक होंगी और 6:30 से 7:30 फिर योग होगा। आज वर्ल्ड मेडिटेशन आवर है। ओम शांति, ओम शांति। साकारी वतन से, साकारी दुनिया से चले हम निराकारी दुनिया। सूर्य चांद तारागण से पार मन बुद्धि को। यहाँ के सर्व संबंध से इस देह से भी न्यारे होकर चले सूक्ष्म वतन की ओर, ब्रह्मापुरी में आए, आज ब्रह्मा और ब्रह्मावत्स सूक्ष्म वतन में मिलन मना रहे हैं। आवाज से परे, इशारों से लेन देन हो रही है, दृष्टि से बाबा का प्यार, शक्ति शांति की अनुभूति करें, यहाँ पूर्णिमा की चांदनी की तरह सिल्वर लाइट देखने में आती है। वहां से चले हम विष्णुपुरी में, विष्णुपुरी में गोल्डन लाइट सब गोल्डन महल स्वर्ण के रत्न जड़ित बगीचे में खूबसूरत फूल और फल देखने में आते हैं। फल बहुत नीचे हैं, हम तोड़ सकते हैं। फल को दबाने से ही उसमें से जूस निकलता है। पशु पक्षी सब एक दूसरे प्यार से हिलमिल के रहते हैं। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। खेड़ों को खेत में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बीज बोते हैं, टाइम पर वर्षा होती है। जितनी सूर्य की किरणाएं चाहिए उतनी मिलती है और फसल अनेक गुनी होती है। विष्णुपुरी से चले हैं हम शंकरपुरी में। वहां डार्क ऑरेंज लाइट है। शंकर तपस्या कर रहे हैं, बहुत शांति की अनुभूति होती है। हम भी थोड़ी देर उस शांति में तपस्या करें। शंकरपुरी से चलो निर्वाण धाम, निराकारी दुनिया, परम धाम। बिंदुवन बिंदु बाप के प्यार की लगन में मगन हो जाओ। आवाज से परे, संकल्प से परे, बाप की याद में खो जाओ।